ओम शांति। आज के सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। एक हाथ हिलाकर दीदी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। यूं तो जब भी भट्टियां शुरू होती है, पहली क्लास दीदी की होती है, और अगर पहली नहीं होती है तो अक्सर करके हमने देखा है बिल्कुल आखिरी सेशन होता है क्योंकि बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग में दीदी बिजी थे, तो लास्ट में हो गया दीदी का। तो दीदी गुजरात की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन है। 1969 में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान मिला, तब आप स्कूल में पढ़ रहे थे, और 1972 में जब आपने मैट्रिक पास कर ली तो ईश्वरीय सेवा अर्थ अपना जीवन समर्पित किया। आरंभ में सूरत, भरूच, बड़ोड़ा, अहमदाबाद आदि आदि स्थानों पर सेवाएं दी, और उसके बाद लगातार 14 वर्षों तक भावनगर सेवा केंद्र के सब जोन इंचार्ज के रूप में आप सेवाएं करते रहे। और फिर 1993 में जब ज्ञान सरोवर अकेडमी का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका था, बाबा ने आपको वहां निमित्त बनाया। करीब 17 वर्षों तक वहां रहकर आपने वहां की सेवाएं की, रिसेप्शन, अकोमोडेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन आदि आदि। और फिर 2010-11 में शांतिवन में सेवाओं का विस्तार बढ़ता गया तो बाबा ने आपको वहां निमित्त बनाया। आप हमारे कुशल राजयोग शिक्षिका हैं, साथ साथ SML शिक्षिका और साथ साथ भट्टियों की भी प्रशिक्षिका हैं। पूरे देश और विदेश में आप सेवाओं अर्थ भ्रमण करते हैं। अपने युवा काल में 1985 में युवा पद यात्रा में को आपने लीड किया था, और फिर 1996 में बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की तरफ से जो कार रैली आयोजित हुई थी उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया। साथ साथ जितने भी कैंपस में हमारे प्रोग्राम होते हैं, कुशल वक्ता के रूप में आप अपनी सेवाएं देते हैं। आज हमारे बीच में हैं, बिजनेस इंडस्ट्री विंग का तो प्रोग्राम करके ही आए हैं, आप उस विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आज हमारे बीच में बहुत सुंदर विषय के साथ सतो प्रधान और तमो प्रधान पुरुषार्थी में क्या अंतर है, हम दीदी के अनुभव से समझेंगे। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। तीन दिन की तपस्या अच्छी रही? मधुबन में रहने का मौका कभी ही मिलता है, तीन दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला होगा। बाबा की इस भूमि में, कण कण में बाबा, मम्मा और दादियों के अनुभव भरे हुए हैं। यहां नेचुरल योगी हम बन सकते हैं, मेहनत से योग नहीं, सहज बाबा याद आते हैं। पिछले कई दिनों से, बल्कि रोज की मुरली से पुरुषार्थ की नई नई प्रेरणाएं बाबा हमें देते रहते हैं। प्यारे शिव बाबा ने मूल सत्य ज्ञान हमें समझाया, परंतु ब्रह्मा बाबा ने उस पर मनन चिंतन करके विस्तार से हमें समझाया। अपने पुरुषार्थ की अनुभव की बातें बताई। भक्ति में ज्ञान नहीं था, भगवान के प्रति भावना थी, श्रद्धा थी, पर सत्य ज्ञान नहीं था। तो बाबा कहते हैं ना, भटकते रहे, एक मंदिर से दूसरे मंदिर में, एक कथा से दूसरी कथा में, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में, एक गुरु से दूसरे गुरु के पास। जब सत्य नहीं जानते हैं तो इस मेहनत को पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, भटकना कहेंगे, धक्के खाते रहे। अब बाबा ने आकर सारे ही सनातन सत्यों का ज्ञान हमें दिया और हम वो ही देवता घराने की आत्माएं, तो बुद्धि में वो सत्य बैठ भी गए, स्वीकार हो गए, हमारा भटकना बंद हो गया। कई संस्था वाले, मंदिर आश्रम संप्रदाय वाले हमें कहते हैं ना कि देखो, हम आपके पास आते हैं ना, आप भी हमारे पास आओ, पर उसको क्या पता कि हमें सत्य मिल गया है, अब हमें भटकने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जब सत्य मिल जाता है तो आत्मा तृप्त हो जाती, संतुष्ट हो जाती, उनको कोई भूख प्यास नहीं रहती है जो भटकना पड़े। फिर तो हमारा लक्ष्य बन जाता है कि जो सत्य मिला है वो मुझे जीवन में धारण करना है, ज्ञान को अनुभव में लाना है, ज्ञान का स्वरूप बनना, स्थिति बनानी। फिर ये पढ़ाई का रूप ले लेती है। हम रोज ज्ञान योग करते हैं, हमारा लक्ष्य है। जैसे आज भी बाबा ने कहा, तुम्हारा लक्ष्य है, तुम सन्मुख क्यों रोज आके बैठते। हमें बाबा से वर्षा लेना। कितना भारी वर्षा बाबा देते। भक्ति में कहते थे, भगवान जब देते हैं तो कैसा देते हैं, देख ये है संगम युग में बाबा छप्पर फाड़ के, मीन्स अनलिमिटेड, बेहद का वर्षा दे। कभी सोचा भी नहीं था। बाबा कहते ना, छोटे से लेकर बड़े, हर पद वाले, हर मर्तबे वाले सुखी होंगे। जैसे यहां छोटे से लेकर टॉप सब दुखी है, कोई भी अपने को संपूर्ण सुखी नहीं कह सकता है। किसी को तन का दुख तो किसी को मन का दुख, किसी को धन की कमी तो कभी संबंधों में दुख शांति। तो अब हम केवल भक्ति की तरह सत्संगी नहीं है कि सत्संग में गए सुना, नहीं सुना, शुरू से गए, आधे में गए, अंत में गए, समझा नहीं समझा, वहां तो कथा कहानियां है, सुने हुए वही महाभारत रामायण भागवत गीता वही होता है। तो अटेंशन नहीं होता है, लक्ष्य नहीं होता। यहां हमारी पढ़ाई है, एम ऑब्जेक्ट है, हमारा लक्ष्य है हमें पतित से पावन, मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी में बनना। ये लक्ष्य है। इसलिए बाबा ने आज भी कहा ना कि अपने घर में लक्ष्मी नारायण का फोटो लगा दो। लगाया है सबने, हाँ? वो फोटो पूजा के लिए नहीं, हमें ऐसा बनना है, हाँ? रोज बाबा कहते हैं अपने को कंपेयर करो, कहाँ तक ऐसे बने हैं, हमें इनके जैसा दिव्य संपन्न संपूर्ण बनना है। तो रोज बाबा के सत वचन सुनते हैं, भक्ति में तो शास्त्र वचन सुनते हैं, फिर भी गुरु जी कहते हैं तो कहते हैं भाई सत वचन, परंतु हम तो सही में सत्य वचन सुन रहे हैं। तो रोज की पढ़ाई रोज धारण करनी। आज जो बाबा ने कहा, आज तो मुझे धारण करना ही है। रोज की पढ़ाई रोज धारण करते रहेंगे तो रोज सफल हो जाएगा, और रोज सफल तो जीवन सफल। जीवन क्या है, आज और कल। रोज की पढ़ाई रोज मुझे धारण करनी। कल भी बाबा ने कहा ना, जो आज्ञाकारी वफादार पूरे मददगार निश्चय बुद्धि है वो विजय माला के मणके बनते। हमारा लक्ष्य सदैव उच्च होना चाहिए। लक्ष्य ही हल्का और नीचा होगा तो कैसे पास हो। भाई लक्ष्य रखे कि थर्ड क्लास पास कर दे तो भी बहुत है, तो फेल भी हो सकता है ना। जब भगवान से रोज पढ़ ही रहे हैं तो आधा अधूरा थोड़ा कच्चा क्यों पढ़ना है। टाइम तो दे ही रहे हैं ना रोज एक डेढ़ घंटा, जब रोज पढ़ते हैं भगवान से, फिर थर्ड क्लास क्यों पढ़ना है? बाबा ने कहा ना, फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन, जिसको बाबा कहते हैं पास विथ ऑनर होना है। हमारी पढ़ाई पर लोगों को मान हो, इसको कहेंगे भगवान को फॉलो करना, एग्जाम्पल बनना है। हम अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? बच्चे पढ़ते हैं ना, तो माँ बाप क्या चाहते हैं? हाँ, तो हम अपने बच्चों से चाहेंगे कि बच्चा फर्स्ट क्लास आना चाहिए, डिस्टिंक्शन मार्क्स आने चाहिए। तो हम खुद बच्चे हैं ना बाबा के, हम कैसा पढ़ रहे? हम फर्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, वाइब्रेशंस तो मिलते हैं ना कि हमारे माँ बाप अच्छे पुरुषार्थी हैं। आधा कल्प भक्ति में सत्य पाने के लिए मेहनत करते रहे, भगवान मिल जाए, दर्शन हो जाए, मिलन हो जाए। आधा कल्प 63 जन्म सत्य पाने के लिए मेहनत करते रहे, और जब सत्य मिल गया तो आलस करना है? हाँ, आलस्य तो नहीं होना चाहिए, अलबेलापन नहीं होना चाहिए, बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए। कोई कारण मिला नहीं और तुरंत आज क्लास में नहीं जा सके, क्यों भाई? मेहनत, मेहमान आए हैं तो मेहमान को लेके जाओ सेंटर, मेहमान के कारण घर में थोड़ी बैठ जाना, उनको भी साथ लेके जाओ। कारण मिला नहीं और सबसे पहले भगवान को दिया हुआ टाइम ही कट कर देते, आज तो ये है, आज तो वो है, बाकी सब टाइम कट नहीं करते, भगवान के लिए जो टाइम दिया है वो ही कट कर देते, क्यों भाई? आज इस महीने बहुत खर्च हो गया, भंडारी में नहीं डालेंगे, भगवान का ही सहयोग कट, खुद का खर्चा भले बढ़ा ले, ये क्या बताता है? हमें भगवान की कितनी कदर होनी चाहिए, कितने कष्ट सहते हैं भक्ति में, क्या क्या बिचारे मेहनत करते। हमें घर बैठे भगवान मिला है, हमें कितनी वैल्यू होनी चाहिए। भगवान के लिए जो टाइम दिया है, मन बुद्धि दिए हैं, धन दिया है, उसमें हमें बढ़ाना है कि कमी करनी? तो कहेंगे लगन है, लक्ष्य पक्का है, किसी के आधार पर पुरुषार्थ नहीं करना है। भाई तुम भट्टी में आ रहे हो तो मैं भी आती हूं, आप नहीं आ रहे तो मैं भी नहीं आती, लो ये भगवान को पहचाना क्या? हाँ भाई, उनको अनुकूलता नहीं है, उनके अपने हिसाब है। अभी मुझे अनुकूलता है तो मुझे तो पहुंचना ही है ना, जब उनको अनुकूल होगा, हो सकता है मुझे ना अनुकूल हो, तो हम एक दो के आधार पर क्यों चले? हमने खुद अपने विवेक से ज्ञान को समझा है, बाबा को पहचाना है, हमने समय को पहचाना है। पूरे 5000 वर्ष के ड्रामा में एक ही बार संगम युग में बाबा आते, फिर कोई मौका नहीं है। जो समय पर जाग गया, सतर्क हो गया और समय पर लाभ मिल गया, वो ले लेना। पाई पैसे की चीजों का सेल लगता है कि ये 10 दिन सेल है, इतना डिस्काउंट मिलेगा, एक के साथ एक फ्री मिलेगा, तो कितना दौड़ते हैं, कोई सेल मिस नहीं करते हैं। माताएं, इतनी पाई पैसे की चीजों में कितना ध्यान देते। और बाबा कहते पूरे ड्रामा में केवल संगम युग में एक जन्म का पुरुषार्थ, 21 जन्मों की प्राप्ति, आधा कल्प का सुख वर्षा। एक का पदम गुणा प्राप्ति, और क्या भगवान हमें कहे। हमारा उमंग उत्साह कितना होना चाहिए। हमें खुद लगन लगे, धुन लगे, कोई कॉमन चीज भी मुफ्त में मिलती है, सौगात में मिलती है, तो हम मिस नहीं करते हैं। दीदी मेरे को नहीं मिली है करके हम मांग भी लेते, और भगवान इतनी ऑफर कर रहा है और हम इधर उधर हो रहे हैं। ये बाबा बातें नहीं करता है, ये सत्य है, ये हकीकत है, वास्तविकता है। इसलिए खुद की लगन लगे, कोई देहधारी पर आधारित नहीं, कोई धक्का गाड़ी नहीं बनना है कि कोई धक्का मारे हम पुरुषार्थ करें, नहीं, हमें खुद लगन लगे। जबकि 63 जन्मों का अनुभव है और प्रैक्टिकल अभी तो चारों ओर कलयुग का रिजल्ट देख रहे हो ना, कि भौतिकता में, लौकिकता में, दैहिकता में जीवन लगाया, आज क्या रिजल्ट है देख रहे हो ना सबके जीवन। ये तो अच्छा है, हम भाग्यशाली है, बाबा ने हमें कोई 10 साल, 20 साल, 30, 40, 50, 60 सालों से बाबा ने हमें अपना बनाया। हम इतने पक्के, पवित्र, मजबूत बन गए, आज विकारों का, माया का, भौतिकता का कोई भी स्वरूप हमें खींच नहीं सकता है। कोई चीज हमें हिला नहीं सकती, क्योंकि हम समझ गए हैं इसमें कोई प्राप्ति नहीं। अगर दुनिया में देह में देह संबंधों में वैभव में पदार्थों में आत्मा का कल्याण होता तो भगवान क्यों कहते हैं ये सब छोड़ो और मुझे याद कर। आज कितनी बार बाबा ने कहा मुझे याद करो मुझे याद करो, 8 घंटा याद करो, कम नींद करो, 2 बजे उठो, 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, कितनी बार आज बाबा ने। जरूर उसमें हमारा कल्याण है तब तो बाबा कहते हैं, नहीं तो बाबा हमें क्यों कहते। गीता में भी पहला आदेश क्या है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, बाकी सब कुछ छोड़ो तुम मेरी शरण में आओ, अर्थात मैं जो कहता हूं वो तुम करो, श्रीमत पर चलो। ये गीता में भी कहा है कि मूढ़मति को बार बार समझाना पड़ता है, हमें रोज श्रीमत मिल रही है, हर बात की श्रीमत मिल रही। बाबा कहते तुम्हें पूछने की भी दरकार नहीं, बाप स्वयं ही कल्प पहले मुआफिक फिर से समझा रहे, कहने की भी दरकार। एक बार एक बच्चे ने बाबा से पूछा कि बाबा मित्र संबंधी बहुत आग्रह करते हैं उनके घर खाएं, उनके प्रसंगों में खाएं, उनके साथ होटलों में खाएं, नहीं खाते हैं तो वो नाराज हो जाते हैं, तो बाबा हम क्या करें। बाबा ने मुरली में ही उत्तर दिया कि बच्चे क्या करें क्या ना करें वो ही तो बाप रोज समझाते हैं, भगवान रोज कौन सा भाषण करते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो ही तो बाबा रोज समझाते हैं। फिर भी बच्चा पूछ रहा है क्या करूं क्या करूं, माना जरूर बच्चे को खाने की दिल है तब तो पूछ रहा है, वरना भगवान ने कह दिया है ना क्या करना। हमें कोई पतित के हाथ का बाजार का होटलों का कहीं भी हमें नहीं खाना है, वो हमारी सेफ्टी। आज से 55 वर्ष पूर्व जब हम ज्ञान में आए उस जमाने में तो कितना शुद्ध अन्न होता था, गृहस्थी अज्ञानी भी बहुत सात्विक नियम मर्यादा वाले होते, पर बाबा तो भविष्य को जानते थे ना। आज वो हालत है एक चीज खाने जैसी नहीं रही, हरेक में मिलावट बनावट चल रही। हमें तो बाबा ने पहले ही सेफ कर दिया ना। और बाबा ने सिर्फ अशुद्ध नहीं खाना वो त्याग नहीं कराया, बाबा के घर में कितना पवित्र भोग, हर गुरुवार खाते हो ना सभी, हाँ क्यों हाँ नहीं बोल रहे, भोग बनता है ना राजस्थान में कि नहीं बनता है, क्यों ये बाबा मेहनत करते हैं, तोलियां क्यों खिलाते, ब्रह्मा भोजन क्यों खिलाते, शुद्ध भोजन, योग युक्त भोजन, इसका महत्व है ना। बाबा ने बच्चों की पालना की है। आज तक हजारों भाई बहने आते हैं, सीजन में तो 20,000, 15,000, 25,000, पर रेगुलर 12 बजे माना भोजन तैयार मिलता है, हजारों का बनता है। सेंटरों में 100, 200, 500 का बनता होगा। पर बाबा की याद में बनाकर भाई बहनों को खिलाते हैं। क्योंकि लक्ष्य है हमें मन बुद्धि संस्कार को शुद्ध बनाना। हर बात की श्रीमत बाबा ने दी और हमारे बाबा के ज्ञान की क्या विशेषता है देखो। यहां समर्पित जो नियम पालन करते हैं, हमारे घर में रहने वाले भाई बहने भी वही नियम पालन कर, कितनी ऊंची बात है। वहां तो एक गुरु महान बन के चलो, पवित्र बन के बैठ गए, भक्त चेले शिष्य तो वही गृहस्थी में रहने वाले बिचारे। पर बाबा ने हमें समझाया ना कि कर्म की गति का सिद्धांत हर एक को लगेगा। कर्म का हिसाब तो हर एक का बनेगा। इसलिए घर में रहे, सेंटर में रहे कि मधुबन में रहे, हर एक को खुद खुद को श्रीमत की लक्ष्मण रेखा में रहना है। यादगार शास्त्र की कहानी क्या है कि लक्ष्मण रेखा के बाहर सिर्फ एक अंगूठा ही निकाला और रावण ने खींच लिया। तो हम क्यों उल्लंघन करें कोई भी श्रीमत का, नियम का, मर्यादा का। जब चलना ही है खुशी से चल, समझ पूर्वक चल रहा है। कोई पूछे आप इन नियमों में क्यों चलते हैं, तो ऐसा नहीं क्या करें जिस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जाते हैं वहां ये नियम है, ऐसे कहेंगे क्या? हाँ, कोई लाचारी से चलने की बात है क्या? नहीं, बाबा के हरेक बच्चे खुशी से समझ पूर्वक चलते। ये समय है संगम का, संपूर्ण पावन बनने का मौका है। पावन बनने के लिए क्या क्या मेहनत करते थे, नदियों में नहाने जाते थे, तीर्थों पर जाते थे, गुरुओं की चरणों में जाते थे, ये सब क्यों करते थे? पावन बनने के लिए। सच्चे भगत असली भक्ति में तो यही गाते थे ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरु देवा, इसी के लिए ही भक्ति करते। ये तो आजकल अल्पकाल की इच्छाओं के लिए लोग भक्ति करते, वो पावन बनने का मौका आया है। गृहस्थी भोगी जीवन में ही थे 63 जन्म, बाबा ने हमें पवित्र योगी बनाया, सच्चे तपस्वी बनाया। इसलिए यही समय है, बाबा कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि आधा अधूरा कच्चा एक बार ऐसी आदत पड़ जाती है ना, चलता है थोड़ा बहुत तो चलता है, तो कभी भी आप परफेक्ट नहीं करेंगे कुछ भी, आदत पड़ गई ना, फिर हर बात में आपका ऐसा ही होगा, कोई भी काम में एक्यूरेसी और परफेक्शन नहीं। और यहां बाबा ने हमें क्या लक्ष्य दिया है, संपन्न और संपूर्ण। छोटी मोटी कमियों के कारण, इतनी ऊंची धारणाओं के बावजूद भी आज हम साधारण क्यों दिखते हैं। देखो ब्रह्मचर्य कितनी ऊंची धारणा है, जीवन भर के लिए अन्न शुद्धि का नियम कितनी ऊंची धारणा, रोज अमृत वेले उठना कितनी ऊंची धारणा, ऐसे तो नहीं है ना संडे के दिन छुट्टी अमृत वेला नहीं उठना, ऐसा कहा है बाबा, नहीं। हमारी स्कूल में कोई होलीडे नहीं, रोज पढ़ना, ये सब बहुत ऊंची धारणाएं हम बाबा के बच्चों ने की है। लोग तो आपको देख के ही कहते होंगे भाई आप कर सकते हैं, हम तो नहीं कर सकते, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते, तो आप कितनी विल पावर वाली आत्माएं, कितनी पवित्र महान आत्माएं। पर जो छोटे मोटे अवगुण हैं, निंदा पर चिंतन, तेरी मेरी करना, रूठना रुसना, मूड ऑफ करना, इन छोटी कमजोरियों के कारण हम साधारण लगते हैं। लोग सोचेंगे ना जो तेरी मेरी करेगा, यहां का वहां करेगा, मूड ऑफ करेगा, आलस करेगा, वो कैसे निश्चय कर सकेंगे कि यही देवता बनने वाले, दुख देना न्याय करना। इसलिए हरेक अपने आप को चेक करो, जिन कमी कमजोरियों को लेकर ज्ञान में चले थे, आज 10 साल 20 साल 40 साल हो गए, वो छोटी मोटी कमियां अभी भी है, अभी भी है, इतने सालों के बाद भी आदतें गई नहीं है, पहले लौकिक में करते थे अब अलौकिक में वो आदतें हैं। जब तक खुद लक्ष्य नहीं बनाएंगे, मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना है, ऐसे ही टाइम पास नहीं करना है, हमें लक्ष्य बनाना होगा। भल हम समर्पित है, लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो हम भी ऐसे ही रह जाएंगे। हमारा लक्ष्य हो और लक्ष्य बनाने के बाद निष्ठा चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए, आज भी बाबा ने कहा ना, तमो प्रधान पुरुषार्थी क्या बोलेगा, जो होगा वो ठीक है, प्रजा तो प्रजा ही से। पुरुषार्थ करना ही राजा बनने का होता है ना, वो नहीं होगा तो बाकी तो अपने आप ही बन जाएंगे, बनाना थोड़ी पड़ेगा, वो तो अपने आप ही प्रजा दास दासी तो अपने आप बन जाएंगे। आज लौकिक में हर कोई अपने जॉब में प्रमोशन चाहते हैं कि चलेगा, ऐसे कहते हैं। तब तो कितना लड़ते हैं ना, मेरा टर्न था, मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए था, इसको क्यों। हर कोई अपना हक रखता है ना। वर्षे में अगर एक भाई ज्यादा ले और दूसरे को कम दे तो चलता है नहीं, कितने लड़ाई झगड़े होते। तो बाबा हमें पूरा वर्षा देना चाहते हैं तो हम क्यों ना करते हैं, पीछे क्यों हटते हैं। सिर्फ योग्य बनना है ना, और क्या करना है। बाबा कहते हैं ना, सपूत बनो, लायक बच्चा बनो, तो अपने आप प्राप्ति के योग्य बन जाते। और ये पुरुषार्थ हमारा नित्य का है। शरीर के लिए रोज खाते हैं, रोज सोते हैं, रोज नहाते हैं, रोज श्रम करते हैं। कभी विचार आता है आखिर कब तक खाना है। कोई सोचता है कि रोज तीन टाइम आके बैठ ही जाते हैं, हैं? भाई आखिर कब तक खाना है। नहीं, रोज तीन टाइम हमें खाने के लिए हम रेडी होते तो पुरुषार्थ के लिए हम क्यों ऐसा सोचे, कब तक करना है। हमारा तो लक्ष्य है ना, जहां तक जीना है ज्ञानामृत पीना है। जो नहीं जानते हैं वो बेचारे सोचते रहते हैं कि आखिर आपको कब तक ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जाना पड़ेगा ये रोज का पुरुषार्थ जितना क्वालिटी चलेगा उतनी अच्छी स्थिति बनती जाए। कोई मेहनत की बात नहीं है, 10 घंटे बैठ जाओ, बाबा ने कभी ऐसे नहीं। कर्म योगी बनो, अटेंशन, बाबा ने कहा ना, अभ्यास में अटेंशन हो। ये प्रतिदिन का पुरुषार्थ, कोई मुश्किल बात नहीं, मेहनत की बात नहीं। इसलिए आज बाबा ने कहा सतो प्रधान पुरुषार्थ, नंबर 1 पुरुषार्थ, क्वालिटी पुरुषार्थ। और उसका आधार है, उसका आधार है श्रीमत, निश्चय। बहुत समय मन मर्जी से चले, घर में कहते हैं ना मेरी मर्जी, मुझे करना होगा तो मैं करूंगा। लौकिक में भी सिखाते हैं कि भाई परिवार के खानदान के जो नियम मर्यादा है उस अनुसार चलो, मेरी मर्जी चलते हैं तो देख रहे हो ना आज परिवार कितने टूट रहे हैं। अपनी मन मर्जी अनुसार चलते हैं तो देखो आज कितने भटक गए। बाबा कहते मन मत नहीं, बुद्धि समर्पित करो बाबा। सत्य के आगे तो समर्पित होंगे ना। जो बातें श्रीमत के अनुकूल है वो तो मैं करूंगी ना भाई। मेरी मन मत आप ना माने, आपकी मन मत मैं ना मानू, पर श्रीमत तो आप भी मानेंगे और मैं भी मानूंगी ना। क्योंकि अभी हम पुरुषार्थी हैं, संपूर्ण तो बने नहीं हैं। जब तक हम निर्दोष बन जाएं, निर्विकारी बन जाएं, तब तक जो हमारे बड़े हैं, दादियां हैं, दीदियां हैं, जो बाबा की मुरली की श्रीमत की अनुसंगत बातें हैं वो हमें माननी है। परख शक्ति तो है ना सबको, बाबा के सत्य ज्ञान से कितनी दिव्य बुद्धि मिलती है, परख शक्ति आती है। कोई भी कोई बात कहता है तो मुरली में श्रीमत अनुसार परख सकते हो ना कि ये राइट कह रहा है या रॉन्ग कह रहा है। मुरली का अध्ययन अच्छा चाहिए, बहुत अच्छी परख शक्ति आएगी, निर्णय शक्ति आएगी। जीवन में कदम कदम पर ये दोनों शक्ति चाहिए, राइट क्या है रॉन्ग क्या है। इसलिए बाबा की सबसे बड़ी कृपा यही है कि बाबा हमें सत असत की परख देते हैं। कंपैरिजन कर, श्रीमत के अनुकूल ये बात है, क्योंकि अक्सर हम एक दो के कहने पर चलते रहे। अब मैं जैसी पुरुषार्थी होंगी ऐसी मेरी मत होंगी ना। एक नया नया भाई आ रहा था, बहन भी नई नई कोर्स कराने वाली थी, तो उसने कहा दीदी आप कहते हैं शिव बाबा से योग लगाओ, पर मुझे तो कृष्ण ही याद आते रहते। तो बहन भी नहीं थी, कहती कोई बात नहीं मेरे को भी अंबा माता याद आती रहती। क्योंकि पक्का ज्ञान नहीं था। हा? तो जो जैसा पुरुषार्थी होगा ऐसी मत देगा ना, तो क्यों एक दो की मत पर चल रहा है। श्रीमत क्या कहती है, नंबर वन पुरुषार्थी ब्रह्मा बाबा क्या कहता है मुरली में देखो। इसलिए ऐसे नहीं ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर आके बस मुरली पढ़ के चले गए, नहीं, पूरा ध्यान अटेंशन देना है कि और चिंतन में कितनी पॉइंट्स मिस हो जाती है मुरली के टाइम। निंद्रा में कहीं चले जाते हैं तो पूरी मुरली मिस हो जाती है। तो हमें ये खुद पर मेहनत करनी है कि मुझे योग में और मुरली क्लास में निंद्रा नहीं आनी चाहिए। कुछ भी करो, अपना आहार विहार शुद्ध करो, हल्का करो, रात को जल्दी टाइम से सो जाओ। भल बाकी बैठे हो, बातें करते हो, पर मुझे जल्दी सोना है, क्योंकि मुझे अमृत वेला उठना है और मेरा योग अच्छा होना चाहिए। तो आपको कभी कोई प्रश्न नहीं होगा, जो मुरली का अच्छा अध्ययन करेंगे उनको कभी कोई प्रश्न होगा ही नहीं, क्योंकि बाबा हर रीति से हर बात अनेक बार हमें समझाते। कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मुंझेंगे नहीं, क्या करूं, कोई मुंझ होगी ही नहीं, क्योंकि बाबा हर बात का जवाब देता है। इसलिए बाबा ने कहा परमत मनमत नहीं। श्रीमत और ही हम सब कितने निश्चिंत हो गए, रोज बाबा गाइड करते, रोज बाबा मार्गदर्शन देते। आज दुनिया में कोई भी बात की कंसल्टेंसी के कितनी फीस होती हा? और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ के लिए बाबा रोज हमें गाइड करते हैं। बाबा जैसा निष्काम कल्याणकारी, रहम दिल, प्यार का सागर, जिसको और कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसा कौन हमें मिलेगा? हमें बाबा मिले हैं ऐसे। टाइम ओवर हो जाएगा, फिर संगम के सारे वरदान समाप्त हो जाएंगे, फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये संगम के समय के वरदान है। एक का हजार गुणा, पदम गुणा, ये संगम का वरदान। इसलिए बाबा कहते हैं ना, चलो संगम की भी बात, संगम में भी हमारा टाइम ओवर कब हो जाएगा पता है हमें? इसलिए भविष्य की बात नहीं, अभी ये समय संकल्प श्वास मुझे सफल कर ले। एक ही धारणा, सी फादर, फॉलो फादर, बस। हमें अच्छा एग्जाम्पल बनना है ताकि भूले चुके भी हमारे पीछे आने वाले नए भाई बहने हमें फॉलो करे तो भी मंजिल पर पहुंच जाएं, मिसगाइड ना हो जाए हमसे कोई, हाँ भाई ये तो पुराना भाई था, ये तो हम समझते थे इतने पुराने हैं तो ठीक ही होंगे, कोई हमसे मिसगाइड ना हो। हमें बाबा ने निमित्त बनने का मौका दिया, हम समर्पितों को मौका है एग्जाम्पल बनने का। हरे को। अभी तो कोई ग्रस्ती नहीं है ना, बाबा के बच्चे तो सब ट्रस्टी है, सब ट्रस्टी है। बाबा के तरफ से निमित बनकर आप परिवार में बैठे हैं, बाबा के तरफ से निमित बनकर हम सेंटर में बैठे हैं, अलौकिक परिवार में बैठे। हमें देखे बाबा याद आवे, हमें देखे आत्मभिमानी लोग बन जाएं, यही तो हमें सेवा करनी। एक बार बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने एक पार्टी को मिल रहे थे, तो बाबा ने कहा था कि ज्ञान अच्छा लगता है, योग अच्छा लगता है, और बाबा के बच्चे भी बनते हैं, पर फिर धीरे धीरे क्यों लंगड़ाने लगते हैं, उमंग उत्साह कम क्यों होता है, क्योंकि ब्रह्मा बाप जैसा प्रैक्टिकल रोल मॉडल कोई जब देखने को नहीं मिलता है तो कमजोर पुरुषार्थी बन जाते हैं। तो हम सबका विशेष, हम समर्पितों का विशेष, जो पुराने भाई बहने, हम सबका लक्ष्य हो हमें एग्जाम्पल बनना है। ताकि बीच में हम निमित बन के बैठे हैं तो हम राइट गाइड कर सके सबको। आज जो ज्ञान में आए कल उनके पीछे आने वाले है ही है, है ना, हरेक के पीछे कोई ना कोई है। मधुबन में तपस्या करने आए हैं, हरेक खुद साइलेंस में बैठकर देखो अपने आप, किन बातों में अभी भी हम अलबेले हैं, आलस्य है, हमें कहां अपने आप को ठीक करना है। वहां आपको इतना टाइम नहीं मिलता है ना, वहां तो आप रोज का मुरली क्लास करते हैं, रूटीन पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने ये बड़े बेहद के स्थान बनाए ताकि आप सभी चार पांच दिन का समय निकाल कर आए, साइलेंस में रहे। यहां और कोई जवाबदारी नहीं है, आपको तैयार भोजन है, आराम से रहना है, ये सारे प्रबंध इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप स्वदर्शन करें, स्वदर्शन करें, अपने आप को देखें, कहां मुझे अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। ऐसे ही चलते रहने से कोई मंजिल नहीं पहुंच जाता, मंजिल की दिशा में हर कदम उठाने से मंजिल के पास पहुंचते। तो देखो हमारे हर कर्म श्रीमत पर हैं, मंजिल की ओर पहुंचाने वाले हैं। टाइम की मार्जिन देखो, समय अंत का आ गया, संगम युग के 86 वर्ष पूरे हो गए। कौन सी शिवरात्रि मनाई? 87 87वीं। हम संगम के अंतिम चरण में आ गए। मंजिल कितनी ऊंची है और टाइम की मार्जिन कितनी है? बहुत कम है। तो स्पीड फास्ट होनी चाहिए, तभी बाबा कहते हैं ना तीव्र पुरुषार्थी। स्पीड अपनी देखो, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं पर स्पीड तीव्र पुरुषार्थी हैं, ये खुद खुद को देखना। हम लोगों का तो भाग्य था, बहुत कम भाई बहने थे, दादियां हमें हर बात में समझाती थी, सिखाती थी, करेक्शन देती थी, अधिकार से सावधान करती थी। अब तो परिवार बड़ा है, खुद खुद पर ध्यान देना, यह हमारी सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी। तो यहां मौका है, खुद को देखो और खुद अपने पुरुषार्थ का प्लान बनाओ। मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना? हाँ, मुश्किल नहीं है। मुश्किल धारणाएं आपने कर ली है, अब सिर्फ लास्ट फिनिशिंग, फाइनल टचिंग देना है, छोटी मोटी बातों को ठीक कर लेना है। चलो सभी खड़े हो जाइए। हाथ पांव ठीक कर लो, हाथ ऊपर करिए, ऊपर खींचिए, नीचे, फिर ऊपर करिए और खींचिए, छत को हाथ लगाइए, खींचिए, हाँ नीचे, तीसरी बार हाथ ऊपर करो और खींचो। बहुत अच्छा। गर्दन को ठीक करिए, आगे झुकाइए, पीछे, राइट साइड झुकाइए, लेफ्ट साइड झुकाइए, थोड़ा गोल घुमाइए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कमर को ठीक करिए, कमर आगे थोड़ी झुकाइए, कमर से पीछे संभाल के, हाँ राइट साइड कमर से झुकिए, लेफ्ट साइड गोल गोल घुमाइए कमर से, कहते हैं ना बैठे बैठे थक जाते हैं, तो शरीर को ठीक करना पड़ता है। अभी पांव को स्ट्रेच करिए, पांव की उंगलियों पर ऊंचे हो जाइए, हाँ तीन बार, कदम ताल करिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अपने स्थान पर खड़े खड़े थोड़ा दौड़िए, बहुत अच्छा। खड़े खड़े अभ्यास करेंगे, जो थक जाएं जब चाहें बैठ जाएं, पर जब तक खड़े रह सकते हैं, पांच संकल्पों को पक्का करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर रोज घर जाकर भी खुद खुद को अमृत वेले योग के बाद 3 मिनट रिवाइज करना रोज। पहला संकल्प, हम सत्य ज्ञानी आत्माएं हैं, स्वयं भगवान रोज हमें पढ़ाते हैं, हर बात समझाते हैं, सिखाते हैं। हम डायरेक्ट परमात्मा योगी आत्माएं हैं, हम ज्ञान स्वरूप समझदार सेंसिबल आत्माएं हैं, अब माया से धोखा नहीं खाना है, मुझे स्पष्ट है मुझे स्वयं में क्या धारण करना है, क्या छोड़ना है, मेरा लक्ष्य है मुझे स्वयं में संपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन करना है, आमूल परिवर्तन करना है, बाबा जैसा बनना है, राइट साइड घूम जाइए। राइट साइड घूम जाए, दूसरा संकल्प दृढ़ करें, स्वयं भगवान मेरा साथी है, जब मैं याद करती हूँ, जहां मैं याद करती हूँ, स्वयं सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ हैं। अब मैं अकेली नहीं हूँ, कमजोर नहीं हूँ, हर क्षण हर स्थान प्यारे बाबा मेरे साथी है, मददगार है। जो बाबा कहते हैं वो मुझे करना ही है, मैं दिल से बाबा को याद करती हूँ, बाबा मेरे पास आ जाते हैं, साथी बन जाते हैं। राइट साइड घूम जाइए, राइट साइड, तीसरा संकल्प रियलाइज करें, अंडरलाइन करें, ये संगम युग का कल्याणकारी समय है, संपूर्ण प्राप्ति करने का अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाने का ये शुभ समय है। हर संकल्प क्षण हर श्वास सफल करने का मौका है। अभी ही प्राप्ति कर लेनी है। ये वरदानी समय चढ़ती कला उड़ती कला का समय एक का पदम गुणा प्राप्त करने का समय। स्वयं भगवान सर्व भंडारे खोल कर बैठे हैं। अपनी झोलियां भरने का समय। पूरे निश्चय उमंग उत्साह हिम्मत से तीव्र पुरुषार्थी बनना है। राइट साइड घूम जाए। चौथा दृढ़ संकल्प संगम के अंतिम चरण में हम पहुंच गए। यह समय महातपस्वी बनने का समय है। दृढ़ता संपन्न शक्तिशाली तपस्या का समय है। हर कर्मेंद्रिय से और सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार से देह अभिमान का त्याग कर हर कर्मेंद्रिय में आत्माभिमानीता का तेज धारण करना है। राइट साइड घूम जाए। मुझे अपने चलन और चेहरे से भविष्य देवता पद को प्रत्यक्ष करना है। प्यारे बाप दादा को प्रत्यक्ष करना, यज्ञ का नाम रोशन करना है, बाबा का नाम बाला करना, बैठ जाए। बाबा के सामने मन ही मन पांचों ही संकल्प रिवाइज करें और प्रॉमिस करें,
कल कोई रिक्वेस्ट कर रहे थे पावरफुल योगा, अनुभव किया सभी ने पावरफुल योगा? जो समझते अनुभव किया हाथ खड़ा करें। दीदी सब अच्छा अनुभव कर रहे हैं, और पता चला सतो प्रधान पुरुषार्थी बनना है तो क्या क्या करना है? एक हाथ हिलाकर दीदी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।